नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार देश में किसानों के कल्याण और उनकी आय में वृद्धि को प्राथमिकता देने के साथ ही कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। असम के गुवाहाटी में एक जनसभा में देश के 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत देश के साथ दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है।
आज भारत दुनिया का वो देश है जो अपनी ही नहीं बल्कि विश्व की ऊर्जा जरूरतों का भी ध्यान रख सकता है। यहाँ असम में जो हमारी रिफाइनरीज है उनको भी बीते वर्षों में एक्सपांड किया गया है। असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। गोलाघाट में दुनिया का पहला सेकंड जनरेशन बायो एथेनॉल प्लांट भी स्थापित किया गया है।
प्रधानमंत्री ने केंद्र में कांग्रेस के 10 साल के शासन के दौरान कृषि क्षेत्र को नजरअंदाज करने के लिए उसकी आलोचना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लगभग 19,680 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लोकसभा ने आज वर्ष 2025-26 के लिए पूरक अनुदानों को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत सरकार ने 2,81,000 करोड़ रुपए से अधिक के सकल अतिरिक्त व्यय की मांग की थी। अतिरिक्त खर्च की मंजूरी मुख्य रूप से उर्वरक, खाद्य सब्सिडी और रक्षा सेवाओं पर बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए मांगी गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने समग्र व्यापक आर्थिक ढांचे को मजबूत किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है और यह 1 अप्रैल से लागू होगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा है कि औसतन मासिक वाणिज्य एलपीजी आवश्यकता का 20% आवंटन कारोबारियों को आज से शुरू हो गया है। होटलों और रेस्तराओं के लिए अतिरिक्त आपूर्ति से जुड़े उपाय किए जा रहे हैं। भारत ने पश्चिम एशिया में वर्तमान स्थिति के बीच ईरान से ऊर्जा और वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिश्कियन से बात की। श्री जायसवाल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में 170 भारतीय नागरिक ईरान की सीमा से अर्मेनिया पहुंचे हैं। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश पेट्रोल और डीजल के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। उन्होंने कहा कि तेल शोधन कंपनियां यानी सभी रिफाइनरियां अपनी 100% क्षमता से काम कर रही हैं। ईरान में के राजदूत मोहम्मद फतेह अली ने भारतीय जहाजों की जल्द ही हॉर्मुज जलडबरू मध्य से गुजरने की अनुमति मिलने का संकेत दिया है। श्री फतेह अली ने नई दिल्ली में कहा कि भारत की ईरान से दोस्ती है। उन्होंने कहा कि ईरान का मानना है कि क्षेत्र में दोनों देशों के साझा हित हैं।
हमारा मानना है कि ईरान और भारत मित्र हैं, हमारे बीच कई समानताएं हैं और भारत में राजदूत के रूप में मैंने आपसे कहा था कि युद्ध के बाद इस स्थिति में भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में हमारी मदद की है।
सरकार ने आज कहा है कि देश हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्रभावित करने वाली सभी घटनाक्रमों पर नजर रख रहा है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि सरकार हिंद महासागर में देश के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। प्रमुख वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि दर का अनुमान 7.4% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि हालांकि पिछले 2 महीनों में आर्थिक गतिविधियों में कुछ अस्थायी गिरावट हुई है लेकिन घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है। विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में 1500 से अधिक छात्र शामिल हुए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि संवादात्मक सत्रों का केंद्र बिंदु राष्ट्रीय निर्माण में युवाओं की भागीदारी और विकसित भारत एट 2048 के विजन पर था। भारतीय टीम हैदराबाद में महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर्स के फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल मैच कल शाम 7:30 बजे भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। आज सेमीफाइनल में भारत ने इटली को 1-0 से हराया। भारत की मनीषा चौहान ने मैच का एकमात्र गोल किया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।